ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नाम्ने नमस्ते। सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत कक्षा में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से। नित्यम भागवत सेवया, तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद अध्याय 31 और श्लोक संख्या 15 पे हम चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है प्रजेताओं को नारद का उपदेश। तो 15वां श्लोक आज का हम करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ हाथ जोड़ करके सभी प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासाम् ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं गुरु दीन तारणं। ओम शिवाय कृष्ण कृष्ण। तो आज का श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हराव एव गुण प्रवाह यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हराव एव गुण प्रवाह यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौस्तजङ्गमानि तथा हराव एव गुण प्रवाह यथा जिस तरह एव निश्चय ही सूर्यात् सूर्य से प्रभवंती उत्पन्न होता है वारह जल पुनः फिर से च तथा तस्मिन् उसमें प्रविशन्ति प्रवेश कर जाता है काले कालक्रम से भूतानि समस्त जीव भूमा पृथ्वी पर स्थिर अचर जंगमानी तथा चर तथा उसी प्रकार हरो भगवान में एव निश्चय ही गुण प्रवाह भौतिक प्रकृति का उद्भव अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और कालक्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और काल क्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। एक दफा मेरे पीछे दोहराइए इस श्लोक के अर्थ को। वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और काल क्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। तात्पर्य अल्प ज्ञान के कारण निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु भगवान से निकल कर फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। ब्रह्म संहिता 5.40 में पुष्टि हुई है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.4 में हुई है, मत स्थानी सर्वभूतानी। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवनी शक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पतियां तथा सारे चर तथा प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज है। वे पृथ्वी से ही प्रकट होकर उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण शक्ति कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब वे अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता 5.48 में इसे भिन्न प्रकार से कहा गया है, यस्य निश्वसित कालम अवथावलंब्या जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णोर महांस इयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जो श्री कृष्ण के ही एक अंश मात्र हैं। तो यहाँ नारद मुनि प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं। तो ये जो चतुर्थ स्कंद है, इस चतुर्थ स्कंद में हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। आखिरी अध्याय चल रहा है और श्लोक संख्या भी अब 15 श्लोक तकरीबन बाकी हैं, 15-16 श्लोक। तो ये चौथा स्कंद जो है इसको थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि ये समाप्त होने जा रहा है, इसको हम विचार कर लें कि ये जो चतुर्थ स्कंद है जिसको आप काफ़ी समय से श्रवण स्मरण करते आ रहे हैं, इस चौथा स्कंद में क्या है। तो इस चौथे स्कंद में कुल 31 अध्याय हैं। इसमें पहले 7 अध्यायों में धर्म को यज्ञ के रूप में अनुष्ठित करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में शिवजी को भाग नहीं दिया गया। सती जी उस यज्ञ में पहुंची और ये देख करके कि शिवजी का इसमें भाग नहीं रखा गया है तो वो सती हो गई। उसके पश्चात उस युग को संपन्न करने के लिए शिवजी स्वयं वहाँ आए, ब्रह्मा जी आए, लेकिन यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। यज्ञ तभी पूर्ण हुआ जब वहाँ भगवान विष्णु स्वयं पधारे। इस तरीके से जो पहले 7 अध्याय हैं वो जो हैं इसी बारे में चर्चा है, और अगले जो 5 अध्याय हैं उसमें ध्रुव महाराज का चरित्र आता है, किस तरीके से ध्रुव बालक को जो है अपने पिता की गोद में नहीं बैठ पाए, रोते रोते गए अपनी माँ के पास सुनीति के पास कि पिताजी ने मेरे को गोद में नहीं बिठाया, मना कर दिया, और रो रहे हैं खूब सिसक करके। मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, बोले बेटा मेरे हाथ में तो शक्ति नहीं, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, मैं पिता से बड़ा राज्य चाहता हूँ, वही आपको दे सकते हैं, कहाँ भगवान मिलेंगे। ध्रुव बालक का प्रश्न था, वन में मिलेंगे बेटा, तो वन में चले गए, नारद मुनि मिले, और किस तरीके से उनको राज्य की अभिलाषा राज्य की कामना लेकर के गए, और भगवान की प्राप्ति हुई। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया और ध्रुव लोक भी भगवान ने उनको दिया। तो पहले 7 अध्याय में दक्ष प्रजापति और आगे के 5 अध्याय में ध्रुव महाराज और अगले 11 अध्याय में पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन आता है, किस तरीके से पृथु महाराज भगवान के अंश अवतार थे, पृथ्वी का दोहन किया, समस्त जीवों को प्रसन्न किया, पृथ्वी से सब कुछ प्राप्त किया, यज्ञशाला में भगवान विष्णु आए प्रसन्न हुए और अंत में भगवान को प्राप्त हुए, वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से 7, 5, 12 और 11, 23 और 8 अध्यायों में राजा प्राचीन वरिष्ठ और उनके पुत्र प्रचेताओं के बारे में वर्णन आता है, और इसमें मुख्य रूप से जो इन 8 अध्यायों का जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। किस तरीके से जीव को इस संसार में आने के बाद हमारा जो परम लक्ष्य है वो होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। तो राजा प्राचीन वरिष्ठ जो कि मुख्य रूप से कर्मकांड रूपी यज्ञों में लगे हुए थे, पशुओं की हत्या कर रहे थे, वध कर रहे थे, नारद मुनि उनके जीवन में आए, उनको भगवत ज्ञान दिया, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए प्रचेता, इस प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए पहले वो तपस्या करने के लिए चले गए समुद्र में जाकर के, 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, मार्ग में भगवान शिव मिले, शिव ने उनको शूद्र गीत के रूप में उनको मंत्र दिए कि इससे आप भगवान को प्राप्त करोगे, वैष्णवानाम यथाशंभो, शिव जी परम वैष्णव हैं, वैष्णव की कृपा प्राप्त हो गई, उन्होंने तपस्या करी, भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हुए, फिर 10,000 वर्षों तक उन्होंने कई वर्षों तक जो है वो राज्य किया। अब राज्य करने के बाद पुनः उनके मन में अब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो गई, वैराग जाग गया कि अब हमको भगवान को प्राप्त करना है। तो जब ऐसी तीव्र इच्छा हुई तो पुनः उनके जीवन में नारद मुनि का प्रवेश हुआ। तो नारद मुनि अब यहाँ उनको जो है उपदेश दे रहे हैं किस तरीके से, और ये जो आज का श्लोक है ये श्लोक है जो इससे पहला श्लोक था, 14वां श्लोक, जो कि प्रचार में बहुत ही ज़्यादा भक्त लोग इसका उपयोग करते हैं। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इस श्लोक से काफ़ी मदद मिली अपने भक्ति में जीवन में आगे आने में, क्योंकि शुरुआत में तो हम लोग बहुत प्रकार के कर्म कांड में और बहुत सारे देवी देवताओं के साथ जब हमारा संबंध जुड़ा होता है तब मन में संशय और मन में भय रहता है कि क्या करूं, बाकी सब छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप तो कह रहे हैं कि केवल हरिनाम जपो, शिव की कृष्ण की भक्ति करो, तो जो मैं अभी तक करता हूं वो कैसे छोड़ दूं। तो इसी श्लोक के माध्यम से यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंती तद स्कंद भुजो विशाखा प्राणो प्राच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाण अहमरुचित। तो ये जो श्लोक है, जिस तरह वृक्ष की जड़ों को सींचने से तना शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतुष्ट हो जाते हैं। ये जब श्लोक हमने कभी सुना था या आपने कभी सुना होगा, इससे बड़ी शांति मिलती है। इससे लगता है कि हमारे जीवन से हम कुछ छोड़ नहीं रहे, भगवान को तुष्ट करने से सारा जगत तुष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक को ही आगे बढ़ाते हुए अब नारद मुनि जो इस श्लोक में बता रहे हैं, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं कि सूर्य और जल की बात इसमें बताई गई है। क्या बताई गई है कि देखिए इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें तीन बातें हैं मुख्य रूप से। तो जो वास्तव में तीसरी बात है वो हमको सिद्ध करनी है, वो हमको समझनी है, उसको हम देख नहीं पा रहे, इन आँखों से हम देख नहीं सकते। तो नारद मुनि उसको उदाहरण के रूप में हमको समझा रहे हैं। तो पहला उदाहरण देते हैं, वो किसका, सूर्य का और जल का। कहते हैं कि जैसे सूर्य जो है क्या करता है, जब ग्रीष्म काल आता है, गर्मी पड़ती है, तो सूर्य तालाब में से, नदियों में से, सागर में से जल को सोख लेता है, जल को खींच लेता है और फिर समय आने पे उसी जल को वापस दे देता है। जल लिया सूर्य ने और फिर वापस दे दिया। तो शिला प्रभुपाद इसके उदाहरण में कहते हैं कि जैसे एक राजा प्रजा से कर वसूल करता है, कर वसूल करके फिर उसी कर से प्रजा की सुविधाओं पे उसको खर्च करता है, पहले लिया धन और फिर प्रजा के ऊपर उसको खर्च किया। इसी प्रकार से सूर्य देव ने जल को सोख लिया और जल को लेकर के फिर उसको समस्त जगहों पर उस जल को वापस कर दिया। एक उदाहरण, तो ये तो आप सब हम देखते हैं और हम समझते हैं कि किस तरीके से वाष्प या भाव जो बनती है ऊष्मा के भाव, उससे भाप से ऊपर जाते हैं आकाश में और फिर बादलों से हमको वर्षा प्राप्त होती है। तो ये जल जो है हमको सूर्य के कारण प्राप्त होता है। और इसी प्रकार चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, है ना। चर तथा अचर जीव का मतलब समझना चाहिए कि जो पंच महाभूत रूपी ये जो शरीर है ये हमको इस पृथ्वी से या इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इस शरीर में, है ना, इस शरीर को ज़्यादातर इस संसार में हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग कैसे देहात्म बुद्धि में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं इस संसार में। देहात्म बुद्धि का मतलब होता है देह को ही आत्मा मान लेना, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। लेकिन इस बात को हमेशा हमको अपने आप को समझाना चाहिए कि तुम इस देह से अलग हो, है ना। इसको आसान नहीं इतना समझना, समझ भी लेते हैं तो इसको मानना कठिन है। एक बार शिला प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते एक ही विषय पे उनको एक सप्ताह हो गया। अब प्रवचन का विषय था कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं यह शरीर नहीं हूँ। अब भक्त लोग एक दिन सुना, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन सुना, चौथे दिन, पांचवे दिन एक ही बात प्रभुपाद बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। देहिनो स्मिन यथा देहे कोमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। जिस प्रकार से एक जीव बाल्यकाल से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था से फिर अंत में शरीर को बदलता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे मोह से मोहित नहीं होता, मोहग्रस्त नहीं होता। तो प्रभुपाद बताए जा रहे हैं, आखिर सात दिन की कथा सुनने के बाद एक भक्त ने कह दिया, प्रभुपाद बहुत दिन हो गए इसी विषय पे चर्चा करते करते, अब थोड़ा आगे चलें प्रभुपाद ने कहा आपको समझ आ गई कि आप ये शरीर नहीं हो? बोले हाँ प्रभुपाद समझ में आ गया। बोले अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, इतना आसान विषय नहीं है। इतना जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद का कितना जोर रहा इन बातों को बताने के लिए कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, आप ये शरीर नहीं हो। और सारा संसार सुबह से लेकर रात तक जो कार्य कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? प्रभुपाद ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि घर में अगर कोई वास कर रहा है तो घर ज्यादा आवश्यक है, घर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घर में रहने वाला, निवास करने वाला महत्वपूर्ण है। अगर घर में आग लग जाती है तो आप घर को पहले बचाओगे, घर के फर्नीचर को पहले बचाओगे, या घर में रहने वाले को पहले बचाओगे? आप किसको बचाओगे? अगर किसी गाड़ी की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई है तो नहीं, कोई व्यक्ति तो नहीं फंसा? देखिए समझते हम हैं लेकिन जो हमारे कार्य होते हैं, जो हमारी समझ है उससे अलग होते हैं। तो यहां जो बताया जा रहा है कि समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, यहां समझना चाहिए कि जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर हमको पृथ्वी से मिलता है, लेकिन इस भौतिक शरीर में जो वास करने वाला मैं हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो आत्मा हूं, ये प्रकृति का अंश नहीं है। ये किसका अंश है? भगवान कहते हैं तू तो मेरा अंश है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो वास्तव में शरीर आवश्यक है, शरीर महत्वपूर्ण है अधिक या भगवान का अंश? ये तो धूल में मिल जाएगा, ये जो भौतिक प्रकृति से मिला है ये लिखा है धूल में मिल जाएगा, लेकिन भगवान का अंश तो धूल में नहीं मिलने वाला। तो महत्वपूर्ण क्या है? जो आत्मा, जो मैं हूं, जो भगवान का अंश है वो महत्वपूर्ण है। सभी के अंदर आत्मा है और सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन सभी आत्माओं की इच्छाएं अलग अलग हैं। इच्छाएं अलग होने के कारण हमको विभिन्न विभिन्न शरीर प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो यहां जो बताया गया है कि कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और काल क्रम में पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है, है ना। तो प्रत्येक वस्तु, चाहे वो हमारा शरीर है, भौतिक प्रकृति में लीन होता है, लेकिन प्रकृति भी किसकी है? भगवान की है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। तो इस प्रकार यहां तात्पर्य में शिला प्रभुपाद सबसे पहले जो बल देते हैं वो कहते हैं कि जो निर्वेशवादी हैं, निर्वेशवादी का मतलब जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, भगवान के निराकार मानते हैं। तो ब्रह्म संहिता का प्रभुपाद यहाँ श्लोक कोट करते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। सब कुछ गोविंद से प्राप्त हो रहा है, कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं, इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। तो भगवान से ही सब कुछ उद्भूत होता है। और ये ज्ञान कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? नारद मुनि किसको दे रहे हैं? प्रचेताओं को ये ज्ञान दे रहे हैं। प्रचेताओं को तो ज्ञान था, उनको शिवजी के द्वारा ज्ञान दिया गया, भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो याद करने फिर वापस क्या आवश्यकता पड़ गई? वापस आवश्यकता ये पड़ गई, ये हमको सीखना है कि हम चाहे कितना भी रोज स्मरण कर ले, अगर कुछ समय के लिए भी हमारे भक्ति में कुछ कमी आ गई या हमने छोड़ दिया, राजकाज में लग गए, गृहस्थ में लग गए, तो फिर हमको आवश्यकता पड़ जाएगी पुनः पुनः उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जब प्रचेता जो स्वयं भगवान को जिनको दर्शन दिए उनको पुनः नारद मुनि से वो कह रहे हैं कि हमें बताओ, अभी हमने बहुत समय राज्य किया, अभी हमको पुनः बताओ। तो इसीलिए ये जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान के गुण हैं, ये हमें क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम करनी है। अगर बीच में कहीं छूट गया तो फिर हमें भी फिर आवश्यकता पड़ेगी कि हमारे जीवन में भी कोई नारद मुनि आए और हमको फिर सिखाएं, समझाएं। तो नारद जी जो हैं वो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। नारद जी कि जिनके जीवन में नारद मुनि आ गए हैं उन्होंने भगवान को प्राप्त किया ही किया है, चाहे उनके संपर्क में कोई भी आया हो, चाहे ध्रुव महाराज आए, प्रहलाद महाराज आए, और प्रहलाद महाराज को तो गर्भ में ही है ना शिक्षा दी, ध्रुव महाराज को बाल्यकाल में दी, और उन्होंने व्यासदेव को शिक्षा दी, और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को दी, उन्होंने भगवान के पिता वासुदेव को दिया, और सबको जो उनके जीवन में आए, चाहे कोई भक्त आए चाहे कोई अभक्त आए, वाल्मीकि को भक्त बना दिया, रत्नाकर डाकू को भक्त बना दिया, वाल्मीकि नाम पड़ा। तो नारद मुनि जो भी उनके जीवन में आया उनको जो है उन्होंने भक्त बना दिया। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक में मुख्य बात यह है कि सब कुछ भगवान से उद्भूत होता है, और शिला प्रभुपाद इस अपने तात्पर्य के अंत में एक बात कहते हैं कि सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जो श्री कृष्ण के ही एक अंश मात्र हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि महाविष्णु से सारी सृष्टि प्रकट होती है और महाविष्णु से पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके रोम कूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि वासु जो श्री कृष्ण हैं, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, तो कृष्ण सब कारणों के कारण हैं। कृष्ण से वासुदेव, वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, इस तरीके से ये चतुर जो है ये चार भगवान के अंश प्रकट होते हैं। फिर संकर्षण से नारायण प्रकट होते हैं, नारायण से फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध दूसरे चक्र में आते हैं, और दूसरे वाले चक्र से संकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं। वो महाविष्णु जो प्रकट होते हैं वो सारी भौतिक सृष्टि के कारण हैं, और उस भौतिक सृष्टि के जो महाविष्णु कारण हैं उन महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु ये होते हैं। तो भौतिक सृष्टि को संचालन के लिए तीन विष्णु हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। और ये नारद पंचरात्र में एक ये श्लोक आता है, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विधु, एकम तु महता स्रष्ट्र, द्वितीयम तु अंड समस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्तम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। बताया गया है कि सृष्टि के लिए भगवान का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं, द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं, और तृतीय शिरोदक्षाई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं, प्रत्येक परमाणु के भीतर परमात्मा कहलाते हैं। जो भी इन तीन विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो ये जो भगवान की शक्तियां हैं, भूमिर आपो नलो वायु खम मनोबुद्धिर एवं च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो भगवान की शक्तियों से ये संचालन होता है, भौतिक प्रकृति बनती है और समय आने पे फिर भगवान में विलीन हो जाती है। तो ये सृष्टि कैसे बनती है, सृष्टि का संचालन कैसे होता है? सृष्टि का संचालन दो प्रकार से होता है। सृष्टि का संचालन एक तो ब्रह्मा जी करते हैं और एक भगवान स्वयं करते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का संचालन करते हैं तो उसमें उपादान और निमित्त, ये आपने सुना होगा, इसके उदाहरण दिए गए होंगे पूर्व में कि ब्रह्मा जी क्या हैं। ब्रह्मा जी केवल निमित्त हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन सारा जो रॉ मटेरियल है, ज़्यादा सारा जो कच्चा माल है वो कौन सप्लाई करता है? वो भगवान सप्लाई करते हैं, वो महाविष्णु सप्लाई करते हैं। सब जीवों को दे देते हैं कि ये जीव लो, और ये जीवों का चिट्ठा, ये कर्मों का चिट्ठा हर जीव का दे देते हैं ब्रह्मा जी को। अब इन जीवों को आप क्या करो, इनके कर्मों के हिसाब से इनको अलग अलग शरीर आप प्रदान कर दो। तो उपादान कौन है? उपादान है भगवान विष्णु, महाविष्णु, कृष्ण के स्वांश, ये उपादान हैं। ये सारा का सारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल कौन देता है? भगवान महाविष्णु। और उसको बनाते कौन है? है ना, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी उसको बनाते हैं। तो ये सृष्टि तो हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसका व्याख्या की गई है भगवद गीता के 8वें अध्याय में कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है इस ब्रह्मांड के स्वामी है। और जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भगवान के रोम कूपों से निकलते हैं, महाविष्णु के रोम कूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो हमें इसको समझने से एक बात ये भी समझनी चाहिए कि जो ब्रह्मांड है, भगवान के महाविष्णु के श्वास छोड़ने से ब्रह्मांड निकलते हैं और श्वास लेने से ब्रह्मांड वापस शरीर में। एक श्वास ब्रह्मा की आयु है, महाविष्णु की एक श्वास ब्रह्मा की आयु है, उतनी ही ब्रह्मांड की आयु है। और वो आयु है कितनी? महाविष्णु की एक श्वास कितनी है? 430 करोड़ वर्ष हमारे गणना के अनुसार 430 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और 430 करोड़ वर्ष की ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इस तरीके से कितना हो गया? 860 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का 24 घंटा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक रहते हैं, 100 वर्ष तक रहते हैं। और वो जो 100 वर्ष हैं, जिसकी कैलकुलेशन हमारे मन बुद्धि कर ही नहीं सकती, वो कैलकुलेशन महाविष्णु की क्या है? एक श्वास छोड़ना। तो अब देखिए हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति ये है कि जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमको लगता है कि हमारे से ही तो ये संसार चल रहा है, हम नहीं होंगे तो ये कैसे चलेगा। हमारे से ही तो सब चल रहा है, ये कृष्ण बलराम मंदिर, ये सारा जगत, ये हम ही तो चला रहे हैं। ये है हमारी सोच, ये हमारी सोच है, ये हमारी समझ है। आप कैलकुलेट करो जरा और अपनी स्थिति को देखो, हमारी स्थिति कितनी है। जैसे एक घर में कोई आपके चींटी हो तो चींटी का जीवन को आप कितना महत्व देते हो? चींटी के जीवन को मैं कितना महत्व देता हूँ? मेरा जीवन उस चींटी जितना भी नहीं है, चींटी का जीवन बहुत बड़ा हमारे हिसाब से, लेकिन ब्रह्मा जी के हिसाब से हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी निमित्त बनते हैं, लेकिन उपादान भगवान होते हैं। लेकिन ऐसी भी सृष्टि होती है जिसमें भगवान ही उपादान और भगवान ही निमित्त बन जाते हैं। भगवान को ब्रह्मा जी की भी आवश्यकता नहीं, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा उदाहरण हम देख सकते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। जब ब्रह्मा जी भगवान की बाल लीलाओं को देख करके मोहित हो गए, और ये छोटा सा बालक, ये बालक कैसे भगवान हो सकता है, सच्चिदानंद विग्रह ये कैसे हो सकता है, ये तो जूठन खा रहे हैं, एक दूसरे के जूठन खा रहे हैं, एक दूसरे के पीठ पे चढ़ रहे हैं। तो भगवान की ये लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए, और ब्रह्मा जी ने उनका देखने के लिए कि वास्तव में क्या ये भगवान हैं, उनके सारे बछड़ों को क्या किया, चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। जब भगवान बछड़ों को देखने गए तो देखा आके तो उनके जितने ग्वाल बाल थे, जितने मित्र उनके थे, उन सबको ब्रह्मा जी ले गए अपने ब्रह्मलोक में ले जाके छुपा दिया। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने ही शरीर से वैसे के वैसे बछड़े, वैसे के वैसे ग्वाल बाल अपने शरीर से प्रकट किए, और वो ही नहीं, उनके साथ जो भी साथ में उनके समान थे, है ना, लठिया थी, टिफिन बॉक्स थे, कुछ कपड़े थे, किस कलर के थे, कौन सी गाय, कौन सा बछड़ा का सींग का रंग कौन सा था, कैसे कैसे उसके पैर में क्या बंधा था, सब कुछ वैसा का वैसा श्री भगवान ने अपने से ही क्या किया, उद्भुत किया, अपने से ही प्रकट किया, और निमित्त बनाया भी भगवान ने स्वयं बना दिया। ये होती है भगवान की सृष्टि, भगवान के द्वारा सृष्टि। तो समय आने पे सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, ये सब कुछ क्या होता है, ये भगवान के अंदर लीन हो जाता है। लगता ऐसे है कि ये कोई दूसरा कर रहा है, है ना, लेकिन वास्तव में सारे कार्य किसके द्वारा होता है, भगवान के द्वारा होता है, सब कुछ भगवान के द्वारा होता है। जैसे अग्नि है, है ना, अग्नि अगर किसी वस्तु को जलाती है तो हमको क्या लगता है, किसने जलाया, क्या कहेंगे, आग से जल गया, आग ने जला दिया, आग से जल गया, है ना, क्योंकि हमारे समक्ष क्या है, आग है। लेकिन आग तब तक किसी वस्तु को नहीं जला सकती जब तक के ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन के बगैर आग जला नहीं सकती किसी वस्तु को। तो वास्तव में आग को जो सहायक बन रही है, आग को जलाने में जो सहायक है वो कौन है, वो ऑक्सीजन है, हवा है। इसी तरीके से हमारे जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, प्रथम जीव ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन उसको करने में सहायक कौन है, भगवान। अर्जुन ने युद्ध किया, है ना, अर्जुन तो रथी और सारथी, सारथी कौन, भगवान। भगवान की सहायता से ही अर्जुन ने क्या किया, उस युद्ध को जीता। तो भगवद गीता में भी बताया गया है कि कोई भी कार्य जब हम संपन्न करते हैं उसको करने के लिए पांच जो तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो उसमें बताया गया है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विदिश्चा पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। पांच प्रकार के कारण जो हैं, कर्म का स्थान, कर्ता, उपकरण, यंत्र, इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और क्या है जो सबसे मुख्य है, परमात्मा, परमात्मा की अनुमंता के रूप में, भगवान सैंक्शन के रूप में, भगवान हर कार्य को करने में हमारे सैंक्शन करते हैं। तो जब इतनी बात हमको समझ में आ जाती है कि भगवान ही वास्तव में सब कुछ हैं, एक तो भगवान को जानने से पहले हमें स्वयं को जानना होगा। भगवान को तो हम जानते नहीं, भगवान कहते हैं वेदाहम समतितानि वर्तमानि च अर्जुना भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। हे अर्जुन, भूतकाल में जो भी घटित हो चुका है मैं सब जानता हूँ, वर्तमान में जो हो रहा है सब जानता हूँ, भविष्य में जो होने वाला है मैं सब जानता हूँ, मैं सब जीवों को भी जानता हूँ। सब जीवों को भगवान जानते हैं लेकिन मुझको कोई नहीं जानता। भगवान को हम नहीं जानते लेकिन भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चति तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, केवल भक्ति के द्वारा मुझको जाना जा सकता है और फिर आप मुझ तक प्राप्त हो सकते हो, है ना। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है प्रेमानंद छुरित भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदयशु विलोकयंती। तो भक्त जो हैं भगवान को सदैव दर्शन करते हैं और भक्ति के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। जब हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे कि ये जो अंश है, जो जीव आत्मा जो इस संसार में फंसा हुआ है, अई नन तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तपात पंकजा स्थित धूलि सदृश विचिंतया, मैं किस तरीके से इस भवसागर में फंस गया हूँ, गिर गया हूँ, हे गोविंद आपकी कृपा हो तो आप मेरे को अपने चरणों की धूलि बना लो। इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलेंगे और भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करेंगे केवल कैसे, भक्ति से, केवल भक्ति में सेवा से। और भक्ति में सेवा कैसे उत्पन्न होगी, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, ये तीन तो फॉर्मूले हैं। नाम में रुचि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोविंद, हे गोपाल, मैं अपने प्रयास से आप तक नहीं पहुंच सकता, मेरा मन बुद्धि आप में लगता नहीं, हे गोविंद आप कृपा, आपकी कृपा शक्ति अगर मिल जाए तो बात बन जाए। जब कृपा शक्ति भगवान की आगे आ जाएगी तो सारी शक्तियां पीछे रह जाएंगी। माता यशोदा ने जब कृष्ण को बांधना चाहा तो नहीं बांध पा रही थी, अंततः जब भगवान ने देखा कि माँ यशोदा पसीने से लथपथ है और मेरी माँ इतना परिश्रम कर रही है, तो भगवान की सारी शक्तियां कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक को बनने देंगी, बनने नहीं दे रही थी। लेकिन उस वक्त भगवान की कृपा शक्ति सामने आ गई और सब शक्तियां पीछे हो गई और माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया। तो इसी प्रकार से केवल हमारा नाम में अगर रुचि हो जाए, हरे र नाम इव केवलम कलौ नास्ते ओ नास्ते ओ नास्ते गर्त अन्यथा, और कोई गति नहीं। इस बात को हमें रोज समझना है, रोज अपने आप को समझाना है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया जानिया शुइना विष खाइनो, विष खाने के बराबर है इस संसार में ये भौतिक प्रकृति। हमको लगता है कि हमको बहुत सारे कार्य करने हैं, पर हमको ये समझना होगा ये जो हमको मनुष्य जीवन, ये जो हमको मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ये केवल 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 अपने आप को आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान की प्रेम में सेवा करने के लिए। और हमने जो भगवान के साथ रह करके कभी कुछ अपराध किए, भगवान के साथ आज हमारा क्या होगा, विच्छोह हो गया, हम भगवान से अलग हो गए हैं, उस गलतियों को सुधारने के लिए हमको यहाँ ये जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। हम उन मिल करके आप सबके साथ, आप भक्तों का आश्रय लेकर के, सब भक्तों का संग लेकर के हम उन भक्त अपनी गलतियों को सुधारें और भगवान का पुनः प्रेम प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमद्भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, सब भक्तों की जय।